नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।